प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, पुस्तक नवमी, लेक्चर नंबर 723। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य,
ॐ शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोये सौवशाहूणम्। सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट गाति कर्मने प्रणमन करो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने परिशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दुर्गचारी प्रतपवीर्याकरण संयुक्तने के सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवाई हो मनुज क्षेत्रे वर्तताने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुक्त पवित्र आश्रम पानिने प्राप्ति करु साम्यने ये नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के इन ग्रंथों पर जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये नवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 पर हम आ गए।
सिंतेर
गुजराती में। अच्छा, ये 70 और 73 का हमेशा घोटाला होता है। 17 को 17 के 70 और ये सिंते। अच्छा, ये ऊपर से दूसरा प्रश्न है ना, प्रश्न समाधान एक बार हो गया, दूसरा प्रश्न समाधान। आओ मुनि मानता हशे कैसे, ऊपर जरा देखते हैं। ऊपर के समाधान में पहली लाइन है, लास्ट में राग रूप परिणमने की आत्मा में शक्यता है ही नहीं, विकार रूप होने की शक्ति आत्मा में विकार रूप थवानी शक्ति छेज नहीं, पागल गमे ते माने एती कहीं वस्तु थी जाए। हूँ सदा, सदा ने कायम हमेशा स्वयं व्यवहार रत्न त्रयपणे स्वामी पने न परिणमू एवी हूँ चीज छू। यानी व्यवहार रत्नत्रय के स्वामीपना से मैं परिणमता नहीं हूँ, ऐसे मैं स्वयं चीज हूँ। राग पने थवु ए हूँ छू नहीं, यानी राग रूप होना ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसके ऊपर प्रश्न पूछ रहे कि आउ मुनि मानता हसे, समाधान एवं संकीति पहलू माने अने पछी अंदर राग नो अभाव करे छे। मुनि की बात क्या, ये तो चौथे गुणस्थान वाले सम्य दृष्टि की बात है। और ऐसा निर्णय तो मिथ्यात्व अवस्था में निर्णय करके तो सम्यक तो प्राप्त किया, तो उनको लगता है ऐसा मुनि ऐसा मानते होंगे नहीं मानते तो मुनि भी नहीं है और समय दृष्टि भी नहीं है। यहाँ लिखा ना एवं समकीति पहलू माने अने पछी अंदर राग नो अभाव करे छे, ए बात छे। राग नो अभाव ने और स्थिरता अधिक, पहले तो समय तो प्राप्त किया, फिर स्थिरता से और ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ गए। पहले थी सर्व द्रव्य ने समस्त संबंध रहित छे, सर्व द्रव्यो ने जगत में जेटला अनंत तत्वों परमात्माए जोया। भगवान ने कितने अनंत द्रव्य देखे हैं, तो अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और असंख्यात काल। तो भगवान ने इन सब द्रव्यों को जाना है, तो वही कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्य से संबंध से रहित है, किसी भी द्रव्य का अन्य किसी भी द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये पहले में पहले नक्की करना। यहाँ लिखा है ना परमेश्वरे अनंत तत्व जोया, ये अनंत अनंतपने रहीने परनी साथे संबंध विना रहा छे। अनंत की अनंतता तभी रह सकती है जो प्रत्येक स्वतंत्र है, नहीं तो दो चार मिलकर एक हो जाए, फिर और वो चार मिलकर एक जाए, तो सब मिलकर एक ही हो रह जाएगा। ख्याल में आते ना बस। ए गे गया एक संबंध ए तो सहज छे, ए खरेखर संबंध परनी साथे नथी। क्या कहा ऐसा क्यों कहते हैं? आशा बेन आप कह सकेगी? ज्ञेय क्या एक संबंध सहज है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। तो कहते एक खरेखर संबंध परनी साथे नथी, तो किसके साथ है? कैसा? ऐसा नहीं, ज्ञेय क्या एक संबंध अपने साथ ही क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोलो नेहा बेन आप बताएं
कौन।
हाँ देखो ये सभी पूरे लोक को जानने, लोकालोक को जानने का कार्य कहाँ हो रहा है? अपने ज्ञान के पर्याय में। और जीव किसको जान रहा है? वो पर्याय को, जो पर्याय सबको जान रही है उस पर्याय को जीव जान रहा है। और वो पर्याय पर के सन्मुख थे कर जान नहीं रही, वो अपने ही योग्यता से जान रही है, यानी उसके लिए वो सामने पदार्थ की जरूरत नहीं है, पदार्थ है इसलिए जाना ऐसा नहीं है। वो अपने ज्ञान से ही जानन रूप परिणमित हुआ है और उसने उसी को जाना है, यानी खरेखर तो वो गेय ज्ञायक संबंध किसी अन्य के साथ तो है ही नहीं है, यानी वो तो ज्ञायक है। संबंध कहना एक ही चीज में संबंध कैसे लगाओगे? इसलिए क्या कहते देखो, एक खरेखर संबंध परनी साथे नथी, ये तो अहीं अहीं ने अपने में ज्ञान नो स्वभाव छे, ए ज्ञायक गेय ने जाने। ज्ञान का स्वभाव ही कैसा है? तो जानन रूप उसका स्वभाव है। सबको जो स्वभाव होता है उसके कोई लिमिट नहीं, हमने वो असीम नाम का उसका एक गुण देखा, उसका विशेषण देखा था। असीम है ना, स्व को भी पर को भी सबको, खाली वर्तमान को नहीं, वर्तमान भूत भविष्य सब सब कुछ, खाली सामने वाली चीज नहीं, दूरवर्ती भी, लोक भी और अलोक भी। और अपने में रहकर वो जानना अपना स्वभाव है, ये अपना रूप है, ये जानन वाला जो स्वभाव है यही अपना रूप है। और हमने अपना रूप किसमें? शरीर में ढूंढा, राग में ढूंढा, है ना? हम किसी का वर्णन करते हैं या किसी को कोई मान पत्र बहाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्या करेंगे उसमें? ये ऐसा वक्ता है, ये ऐसा करता है, ये उसके गुणगान, यानी कौन राग भावों का तो वर्णन करेंगे, यानी हम अपने को भी और पर को भी शरीर से और उसके राग भाव से जानते हैं, और उसी से वो या खोटा है या सच्चा है या महान है या हीन है, ऐसा हम कहते हैं। ये क्या कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य का। ये गुरुदेव अभी हम मोक्ष प्राप्त पढ़ रहे हैं, तो कहते अभवी हो या कोई अतिरेकी वगैरह जो होते ना, ऐसे कोई महान हिंसक भी क्यों ना हो, वो भी सारे भगवान आत्मा है, वो भी जानने वाले हैं। हम तो उनको पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उनके प्रति क्रोध आता है या द्वेष आता है, परंतु वो तो जैसे अपने को देखते हैं वैसे परजीव भी ऐसा ही है, वो भी उसके शरीर से और उसके उसमें उठने वाले राग से जुदा है। अभी उसका उदय भाव कैसे, हम उसको उदय भाव रूप देख रहे हैं। हाँ, जैसे हम अपने को कैसा देखना है तो स्वभाव रूप देखना है, ऐसा वो भी वैसा ही है, वो भी शरीर रूप नहीं है, राग रूप नहीं है। ये बहुत अच्छा है उसमें। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? गेय ज्ञायक संबंध है खरेखर। हम कहेंगे पर को जाना, पर के साथ गे गया एक संबंध है, बिल्कुल शास्त्र में भी ऐसा कथन होगा, परंतु सच में देखा जाए तो क्या है, वो स्वयं ही ज्ञायक है, जानते हुए ही परिणमता है, जानते हुए परिणमता है। हाँ प्रमेय, हाँ वो तो हम वो निमित्त के अपेक्षा से कहेंगे, परंतु उसका कार्य कैसे, जानते हुए परिणमना
नहीं, पर ज्ञान का स्वभाव प्रकाशक है। हाँ, तो पर को भी जानेंगे नहीं?
बिल्कुल जानेंगे, परंतु वो जानेंगे कैसा, स्वभाव से ही जानेंगे, यानी पर को जानने में पर की अपेक्षा नहीं है, ये कह रहे हैं। जानते तो स्वर पर सबको, नहीं तो नहीं जानते ऐसा नहीं है, वो व्यवहार है व्यवहार, पर व्यवहार है इसका अर्थ है वो जानता नहीं ऐसा नहीं, वो जान रहा है, सबको जान रहा है।
यहाँ कह रहे खरेखर जोता,
खरेखर संबंध पर नहीं साथे
नहीं, तो पर संबंध नहीं,
बिल्कुल जानता है, कैसा जानता है, स्वभाव से जानता है, यानी उसके साथ संबंध नहीं, वो संबंध अपने ही साथ है, पर अपने साथ संबंध कहने की भी जरूरत नहीं है कि संबंध में दो चीजें चाहिए, है ना। देखो एक ये गया एक संबंध है तो सहज छे, एक खरेखर संबंध पर नहीं साथे नहीं, ये तो अहीं ज्ञान नो स्वभाव छे, ए ज्ञायक गेय ने जाने, यानी जानने का उसका स्वभाव ही है। ज्ञान मां प्रमेय थई ने जणाय, पण ए संबंध छे ई छे ज नहीं, अहीं तो कहे छे, यहां ये विषय है, जहां संबंध प्रस्थापित करना है बताना है वहां उस नय से कहेंगे, वहां पर जहां जिस नय से कथन चल रहा है जिस अपेक्षा से उसको हमको बराबर समझना है। एवं तो धर्मी जीव समय दर्शन थवामा भले राज कुटुंबमां पड़ियो होय एम देखाय, देखाय हम किस दृष्टि से देखते, संयोग की दृष्टि से, क्या कर रहा है, अरे राजा है लड़ाई कर रहा है, ये व्यापारी है ये इतना व्यापार धंधा कर रहा है, हम किस दृष्टि से देखते हैं, संयोगों की दृष्टि से देखते, तो कहते भले राज कुटुंबमां पड़ियो होय एम देखाय, समझाय छे काय, पण मारा आत्मा ने अने पर ने काई संबंध नथी। वो अपने को किस रूप से माने, अरे कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई जात नो संबंध मारे अने एने नथी, समझाय छे। आहा हा, अभी बाकी लोग क्या कहते हैं, कोई तो संयोग पलटना चाहते, उसी संयोग में रहते हुए संयोगों से हमें जुदा अनुभव करना है, और लोगों को इतनी जल्दी होती है कि नहीं अभी ये सब बंद करेंगे और घर में बैठेंगे और आत्मा संबंधी विचार करेंगे, ऐसा नहीं है, चाहे जिस संयोग में हो उस संयोग से और उस उदय भाव जो उस संयोगों प्रति जो कुछ राग आ रहा है उससे मैं जुदा हूं, मैं तो ज्ञान रूप हूं, इस तरह से सतत वो भेद ज्ञान चलता रहेगा उसका। वो एकांत में बैठकर वो करेगा वो अलग बात है, परंतु वो तो दिन भर जो कुछ उसकी जो हाँ बाहर जो गतिविधियां चल रही है, जो कोई उसके संयोग चल रहे हैं, उसके संयोगों को देखते हुए वहां उसका राग रूप परिणमन भी हो रहा है, पर उस समय भी उसको ज्ञायक की और उसी की जुदाई, हाँ उसको समझना है, बारंबार बारंबार उस पर अपना जिसको कहेंगे अभ्यास, जिसको कहेंगे हाँ वेद ज्ञान का अभ्यास चलेगा उसको। कारण के ये शैनी व्याख्या करी के हूँ जराय परनो अने पर पण जराय मारा नथी, पर मारा नथी, तो ये संयोगों को मैं हटाऊ मैं छोड़ दू, ये कहां से बात आई, वहां रहते हुए भी वो पर मेरे से जुदे है, वो मेरे नहीं है और मैं उसका नहीं। कारण के सर्वद्रव्य पोतपोताना स्वरूपे विराजमान बधाय छे, सभी द्रव्य पर साथे कोई तत्व ने काई संबंध नथी, यानी प्रत्येक द्रव्य हम अनेक वो तो हम संयोग रूप से देखते हैं उसको, उसमें से एक एक परमाणु सिंगल परमाणु एक एक स्वतंत्र द्रव्य है, और यहां जीव भी स्वतंत्र है। अगर हम स्वतंत्रता का विचार करेंगे तो यहां क्या लिखा है, पोत पोताना स्वरूपे विराजमान बधाय छे, हरेक अपना अपना स्वभाव में विद्यमान है और उसमें ना कोई अनिष्टपना है ना कोई अनिष्टपना है। हमने अपने को मनुष्य रूप मान के रखा है, शरीर रूप माना है, तो फिर वो इष्ट अनिष्ट का फिर विचार भी आता है, क्योंकि अभी मोह राग द्वेष चल रहे हैं। पर साथे कोई तत्व ने काई संबंध नथी, आहा हा बराबर हशे आ, स्वयं ही पूछ रहे क्या ये ठीक लगता है, क्योंकि हमने माना कुछ और है और यहाँ कहते कुछ और है। माने छे ने आ ए भाई कहो गांडो थई ने पागल थई ने माने ते गमे ते माने, क्या कहते हैं ये पागल जैसा मान रहा है अपनी कल्पना से, भले वो माने परंतु वस्तु स्वरूप तो उसका वैसा नहीं होता। परमेश्वर अने सर्वज्ञ देव अने हूँ ए बे चीज तद्दन जुदी छे, मारो मारामा स्वस्वामी संबंध छे, ए मेरा मेरे ही साथ स्वस्वामी, मैं ही मेरा स्वामी हूँ, हूँ एक द्रव्य वस्तु आत्मा छू, अनंत आनंद अने ज्ञानना भावना स्वभाव थी स्वभाव स्वरूप अनंत बेहद वस्तु छू। बेहद क्यों कहा, अमर्यादित असीम, यानी उसमें इतनी शक्ति है, संख्या में तो अनंत है ही है, हर एक गुण में उसकी जो शक्ति है वो भी अमर्यादित है। एने वस्तुनो स्वभाव छे, स्वभाव छे, ते अनहद छे, अनहद एने हद बिना का, उसमें कोई हद नहीं मर्यादा नहीं, प्रमाण विनानो अपरिमित स्वभाव छे, यानी उसमें कोई मर्यादा नहीं अपरिमित, एवा स्वभावनो स्वपणु अने हूँ एनो स्वामी, यानी स्वभाव है वो मैं हूँ, स्वपना है और मैं ही उसका स्वामी हूँ, एवो मारे मारामा संबंध छे, समझाय छे काई, पण पर साथे समस्त संबंध रही छे, एक भी संबंध नहीं वहां के कि नहीं इतना तो है इसका गे गायक तो है निमित्त निमित्तिक तो है एक क्षेत्रावगाही तो है, कुछ नहीं, मेरा पर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तेथी आ षड द्रव्यात्मक लोक में जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, उसकी संख्या कितनी होगी नहीं थी हमने, भगवान आत्मा जहां छे त्या षड द्रव्य आखू जगत छे, भगवान ने छह द्रव्य जोया, देखो यहां क्या कहते, भगवान आत्मा जहां छे त्या षड द्रव्य आखू जगत छे, अरे पण जगत जगत में है ना, भगवान आत्मा में है क्या, अरे ज्ञान में है उसके, यह नहीं कहा जहां भगवान आत्मा है वहीं पर षड द्रव्य आखा जगत है, भगवान आत्मा तो एक कोने में लोकाकाश के एक छोटे से हिस्से में असंख्यात विभाग में, पर वहीं पर पूरा जगत है लोक और अलोक किसके ज्ञान में है, है ना। भगवान ने छह द्रव्य जोया, परमात्मा केवल ज्ञानी तीर्थंकर देवे केवल ज्ञान में छह द्रव्य जोया, है ना, उनके अपने ज्ञान में उन्होंने देख लिया, वो भले उनके जो क्षेत्र होगा असंख्यात प्रदेशी मेरे साथ हाथ होगा या पांचों धनुष होगा, केवल ज्ञान तो उतने ही क्षेत्र में है, उसमें पूरा जगत लोक अलोक सब कुछ वहीं पर जान लिया उन्होंने। छह द्रव्यात्मक लोक लोक्यंती इति लोक, लोक्यंती यहां देखने में आता है दिखाई देते, क्या छह द्रव्य जहां दिखाई देते है उसको लोक कहते, लोक्यंते वो क्रियापद है संस्कृत, अवलोकन शब्द आपको मालूम होगा, अवलोकन यानी क्या देखना, तो लोक्यंत यानी दिखाई देते हैं उसको, इसलिए उसको लोक कहते, लोक जहां छह द्रव्य देखाय, यहां लिखा देखो जहां छह द्रव्य देखाय छे ए लोक, यानी लोक इसको संस्कृत धातु कहते हैं, उसका अर्थ क्या है देखना, छह द्रव्य अनादि छे, अनंत आत्माओं संख्या अनंत जातीय छ, जातीय छ क्या सभी द्रव्य, हाँ और संख्या सबकी मिलकर अनंत, आत्मा निजात परमाणु निजात काल निजात धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाश निजात, बस छह जात छे, इसको कहते हम जाति अपेक्षा छह द्रव्य छे। आवा षड द्रव्यात्मक अथवा आवा छह द्रव्य स्वरूप लोक मा आत्मा थी अन्य एवं काई पण मारू नथी, यानी मैं स्वयं आत्मा हूं और बाकी किसी के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, यहां लिखा है ना उससे अन्य एवं काई पण मारू नथी, आ षड द्रव्यात्मक लोक मा मारा आत्मा थी अन्य एवं काई पण मारू नथी, आत्मा थी कीधु छे आत्मा इतले आनंद ने ज्ञान मूर्ति ते आत्मा है। देखो यहाँ अपने में ही जो आश्रय वगैरह जो भाव है उसको भी अलग स्थान दिया है, उसको भी आत्मा में शामिल नहीं किया। राग ने विकल्प ने शरीर ने व्यवहार मात्र बधुई आत्मा की अन्य छे है तो उसके पर्याय में, फिर भी वो आत्मा उसको नहीं कहा। यहाँ आत्मा किसको कहेंगे? जिनेन्द्र भगवान ने जिसको आत्मा कहा है वो क्या है? वो स्वभाव कायम रहने वाला जो एक सदृश जो भाव है उसको यहाँ आत्मा कहा। वो कैसा है? तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति है। अब मुमुक्षु खास जानबूझकर पूछ रहे, वस्तु शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, ये कहाँ आपने सुना है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्योंकि पंडित जी पूछते हैं, लोग कोई कहते ना मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जीव कहता है मैं ध्यान करता हूँ मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, तो शुद्ध कहाँ से हो? वस्तु यानी द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, क्योंकि द्रव्य किसको कहेंगे? अनादि अनंत पर्यायों का पिंड, क्योंकि द्रव्य प्रत्येक समय में किसी न किसी अवस्था रूप से विद्यमान है। तो अनादि से जो उसका प्रवाह क्रम से जो अवस्थाएं बदलती चल रही है, कितनी हुई अवस्था अनादि से लेकर अनंत काल तक, अनंत जो है तो उसमें कभी कोई शुद्ध अवस्था है कोई अशुद्ध अवस्था है। इसलिए कहते वस्तु क्या है? तो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। समझ में ना ये क्या कहना चाहते? गुरुदेव से कहते ये शुद्ध शक्ति शुद्ध छे उसको ही आत्मा कहते हैं। देखो ये पर्याय वाला शुद्धता की बात नहीं है, वस्तु कायम है ना, अवस्था को मत देखो, वस्तु तो अनादि अनंत कायम है, उसका स्वभाव कायम है, उस स्वभाव को यहाँ वस्तु ये उसको शुद्ध कहा। स्वभाव की अपेक्षा हम आत्मा को देखेंगे उसको कहेंगे शुद्ध आत्मा। देखो ये शुद्ध शक्ति शुद्ध छे उसको ही आत्मा कहते हैं। राग तो आश्रव तत्व है, अगर सात तत्वों की भाषा में बोलना है तो जीव तत्व जिसको कहेंगे, वो भी अध्यात्म वाली परिभाषा, कौन सी? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन आनंद पूरा जो स्वभाव है उसको यहाँ जीव तत्व कहेंगे। जीव द्रव्य नहीं, जब द्रव्य कहेंगे तो गुण पर्याय सब आ गए उसके अंदर, और जब तत्व कहते हैं वो तो स्वभाव भाव केवल लेना, क्योंकि पर्याय उनको अलग स्थान है, आश्रव है बंध है संवर है निर्जरा है मोक्ष है, और अजीव तत्व में तो अपने सिवा बाकी सब तो बाजी द्रव्य तो आई है, बाकी सभी द्रव्य उसमें अंदर है, अन्य जीव भी आ गए उसके। यहाँ क्या कहते हैं? राग तो आश्रव तत्व है, राग तो आश्रव तत्व है छे, दयादान व्रत ये तो आश्रव तत्व छे, वो तो पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, लोगों को क्या लगता है पुण्य करने से निर्जरा होगी, और उसी के पीछे आज मिले थे ना कोई हमको, तो राग तो आश्रव तत्व छे, दयादान व्रत ये तो आश्रव तत्व छे, आत्म तत्व नहीं। यहाँ आत्म तत्व और आश्रव तत्व इसमें भेद ज्ञान मुख्य करना है। वो जीव आश्रव और आत्मा एक में करके मानता है, और क्या करना चाहिए में उसके प्रश्न यही होते हैं, यानी वो आश्रव तत्व में पुण्य या पाप में कुछ फेरफार करना चाहता है या शरीर की कुछ क्रिया करना चाहता है और मानता है कि अभी मुझे धर्म शुरू होगा, भूल में भूल कायम रखकर ये सब ऊपर ऊपरी क्या बातें करना चाहते
हैं। नहीं नहीं वो धर्म को मानता ही नहीं है, निर्जरा चाहिए,
निर्जरा चाहिए, कर्म की निर्जरा चाहिए, हमने बोला कर्म का बंद हो रहा है उसे निर्जरा छोड़ दो।
क्या एक एक सैंपल आते
ऐसा लगता है ना कहा अटके लोग, हाँ ऐसा लगता है ना, दुख तो लगेगा पर क्योंकि अपने भाई बहन सब ये सारे रिश्ते उधर पड़े
हैं,
नहीं वो
चुप रहे
वही बेटर है ना, क्योंकि समझाने से तो समझने वाले नहीं है, तो और उतने इससे रचे पचे घुसे हुए है, वो सुनते हैं तो समझ रहे उसको।
आपको कितनी एक ही बेटे है ना, वो हमेशा मिलते अपने,
और सास ससुर को इतना बड़ा फंक्शन दे, बड़ा फंक्शन रखा, एंजॉय करो सब।
ऐसा ही है, एक कोई भी ओकेजन उसको एक एक माहौल चाहिए होता है, उनको उत्सव मनाते हैं। देखो क्या कहते हैं, आश्रय तत्व नहीं साथ है, हमारे कहीं संबंध नहीं है, तो अपने पर्याय में फिर उसके साथ भी संबंध छुड़ाया, तो पर के साथ संबंध कहाँ से आएगा। मुमुक्षु कहते निश्चय की बात तो ठीक है पूज्य गुरुदेव श्री, पर व्यवहार कहो तो हा निश्चय ए सत्य छे, व्यवहार तो आरोप ना कथन छे, लौकिक कथन, लौकिक कथन छे। और निश्चय व्यवहार ये दो बातें नहीं होती है, एक ही चीज के बारे में दो कथन होते हैं, मोक्ष मार्ग के बारे में दो कथन, जो सच्चा है उसको निश्चय कहेंगे, जो है नहीं पर उसके साथ है तो कह देते, उसके साथ है तो उसको भी कह देते। फिर पूछते शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड आता है, शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड आता है वह तो जो एकांत द्रव्य मानते हैं उसके लिए है, अशुद्ध पर्याय द्रव्य में थई नथी एवं नथी मानतो एने कहे छे, एम मानतो चाहिए ना, अशुद्ध पर्याय द्रव्य में थई नथी एम एम થઈ નથી એમ નથી માનતો। અચ્છા અચ્છા, દ્રવ્યમાં શુદ્ધ જ પર્યાય થાય છે એવું માનવાના, અચ્છા એને કહે છે, સમજાય છે, ઠીક કાઢ્યું, શેઠ પણ કાઢે છે બરાબર। શુદ્ધ અશુદ્ધ પર્યાયનો પિંડ છે ને આત્મા, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં કહ્યો છે ને, એ તો અશુદ્ધતા બિલકુલ નથી એમ માનનારને સમજાવ્યું છે, કે વો તો टोटली सर्वथा शुद्ध ही मानता है ना, पर्याय में भी अपने को शुद्ध ही मान रहा है, यानी अपेक्षा सही जो शुद्धता कही है वो उसको पता नहीं है, बाकी वस्तु जो हाँ हाँ है ना उसमें, बाकी वस्तु जो आत्मा छे ये तो एकलो शुद्ध परती तद्दन भिन्न छे। यहाँ पर में आश्रय तत्व को भी पर कहा, समझाए छे कहीं, यानी यहाँ स्वभाव को शुद्ध कहा है, ख्याल में आती है ना। आ षड्द्रव्यात्मक लोक में आत्मा थी अन्य एवं भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद ना भाव स्वरूप ज्ञायक छे, यानी आत्मा कैसे तो भाव भाव स्वरूप छे, स्वभाव रूप छे, ज्ञायक छे, समझाए छे कहीं, हा हा, કાંઈ પણ મારું નથી અન્ય એવું, કાંઈ પણ અન્ય એવું કિંચિત પણ મારું નથી, એને મારા કુછ ભી નહીં હે। બાવો લાગે છે, ગુરુદેવજી કહેતે આત્મા અનાદિત્ય બાવો જ છે, બાવો સમજતે સંન્યાસી જીસકો કહે ને, હા પરથી ખાલી જ છે, પરથી ખાલી હો, પોતાથી ભરેલો છે, और इसने स्वयं जो भरचक जो भरितावस्थ जिसको कहेंगे ऐसा तो कभी माना ही नहीं, पर के कारण मैं महान हूं ऐसा मानता है, शरीर के कारण मैं अच्छा हूं या कोई पैसे के कारण अच्छा हूं, बल मेरा अधिक है इसलिए मैं अच्छा हूं, हाँ ये सब मद वाले जो आठ मद होते हैं ना, जाति कुल रूप बल सब आ गए उसके अंदर, पर ये स्वयं अपने से महान है पता नहीं उसको, પોતાના સ્વભાવથી ભરેલો છે, પરથી ખાલી છે, ઓર પરથી ખાલી હોય ઉસકે કારણ અપને કો મહાન માન રહા હૈ, ખાલી ન હોય તો પરથી શૂન્યપણે રહી શકે નહીં, ક્યા કહા, અગર પર સે વો ખાલી નહીં હોતા, પર સે રહિત નહીં હોતા તો સિદ્ધ ભગવાન તો પર સે રહિત હૈ ને, તો પરથી શૂન્યપણે રહી શકે નહીં, આહા હા સમજાય છે કાંઈ, જો મુનિપણું લેતા गुरु पासे आवो निर्णय जाहिर करे छे, जाकर बोलते हैं कि मैं पर का नहीं पर मेरा नहीं है, पछी मुनि थाय छे स्वरूप मां लीन थाय छे, आम ले छे एम कहे छे, ले छे एम कहूं, ये तो भावी नैगम थी अत्यारे भावलिंग ले छे एम कहूं, भावी नैगम समझते हैं, आने वाली पर्याय उसको अभी उसका उपचार करना, अभी तो जाकर याचना की कि मुझे मुनि भावलिंग दे दो, मुनि पद दे दो, तो उन्होंने ये ले कैसे कह दिया। अब जब वो ध्यान अवस्था में सातवा गुणस्थान प्रकट करेगा तब वो होगा, परंतु अभी वो जाहिर कर रहे हैं कि मैं पर का नहीं है, पर मेरा नहीं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये तो भावी नैगम थी अत्यारे भावलिंग छे एम कहूं, यानी अभी भावलिंग उन्हें मुनिपना हो गया, इस तरह से कथन कर रहे, उसको कहते भावी नैगम नहीं समझे। एक होता है भूत नैगम नैगम, न एकम वो नैगम, न एकम एक नहीं, द्रव्य एक है, उन पूर्व पर्याय का अभी उपचार करेंगे या अभी पूर्व पर्याय का भविष्य में भी उपचार करेंगे। जैसे हमारे भविष्य के पहले तीर्थंकर कौन होने वाले हैं या कौन है, हम कहेंगे श्रेणिक राजा। वर्तमान में श्रेणिक राजा है क्या वे? प्रथम नर के नारक की है, उसको हम श्रेणिक राजा कहकर पुकार रहे हैं। वो कहते भूत नैगम नय से, उनको हम श्रेणिक राजा अभी वर्तमान में कह रहे हैं, और भावी नैगम नय से हमको पहले तीर्थंकर कौन है, तो श्रेणिक राजा, उनका महापद्म नाम है जो होने वाले तीर्थंग, तब उनका नाम क्या रहेगा, महापद्म। उन श्रेणिक राजा को ही कहना, ये क्या है, भावी 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 नहीं गमने, ऐसे कह सकते हैं हम उसको।
द्रव्यलिंग में मुनि बना लीजिएगा,
द्रव्यलिंग पहले धारण करेंगे, फिर वहाँ ये सब हमने देखा ना, ये सब जाके मुनि को, हाँ बाद में जब ध्यान अवस्था में उनको सातवा गुणस्थान प्रकट, बिल्कुल तभी तो ऐसा ही जीव लिया यहाँ पर, ऐसा ही जीव नहीं, जनरल में तो पहले गुणस्थान से भी कोई सातवा प्रकट कर सकता है,
तभी द्रव्यलिंग होगा और उसको दीक्षा दे देगा।
हाँ ऐसा ही होता है, कोई पहले वाला होगा, कोई चौथे वाला या कोई पांचवे वाला, पहले द्रव्यलिंग वो पात्रता समझते हैं, समझ में आती है ना, कितना पात्र है क्या है,
खुद समझेगा ना कितनी मेरी शुद्धता है,
उसको भी समझ में आती है बात, पर मिथ्या दृष्टि को तो नहीं भी है ना मालूम, परंतु उसको इतना अगर तत्व का जोर है, जो सातवे में जाने वाला है उसकी बात करें, जो मिथ्यात्व में द्रव्यलिंगी कायम रहने वाला है, अभव्य भी हो सकता है, उसकी बात नहीं है, तो इसलिए उसको यहाँ लिखा ना भावी नैगम नय से, उसको भी भावलिंगी मुनि कह रहे, ये भावी नैगम नय का अर्थ बताया। देखो बाकी तो मिला तीसरी लाइन, इन्हें भावलिंग भावी नैगम थी अत्यारे भावलिंग ले छे एम कहूं, बाकी तो पची जारे ध्यान में बेसे त्यारे भावलिंग थसे, भी कितना क्लियर है ना। तो अभी उनका गुणस्थान कौन सा होगा, छठा होगा क्या, नहीं सातवें के बाद छठा होगा, अभी कोई चौथे वाला है, कोई पांचवे वाला है, कोई हो सकता है पहले वाला भी है, यहाँ तो सम्यक दृष्टि लिया है, चौथे पांचवे वाला लिया है, पची ध्यान में बेसे तारे भावलिंग था से, सांभरे तारे भावलिंग था तो न थी, इसका अर्थ क्या है, सांभरे का अर्थ क्या है, अभी उसका इंद्रिय के द्वारा पर की तरफ पर सन्मुख है, सुन रहा है, सुन रहा है का अर्थ क्या है, उसका उपयोग कहाँ लगा है, सुनने के प्रति, बाहर परलक्षी है, परलक्षी उपयोग में उसको भावलिंग प्रकट नहीं होगा, ध्यान अवस्था में होगा।
प्रश्न पूछा था
कौन सा लब्धि, उसका क्या कहना था, अरे
लेकिन क्या वो आएगा ना, विशुद्धि लब्धि आएगा ना, देशना लब्धि का आएगा प्रवचन सुनने के,
अरे प्रवचन पर भगवान का होगा तो हो सकता है,
ऐसे लिखा था प्रवचन,
पूछना उसको किसका प्रवचन, और ऐसे प्रश्न होते हैं ना उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि मिथ्या दृष्टि का है तो देशना लब्धि नहीं कह सकेंगे,
मैंने वो हिसाब से ये कहा प्रवचन सुनते टाइम कौन सी लब्धि है,
अरे प्रवचन किसका, गुरुदेव का है कि किसका है, ऐसा हमें, हाँ नहीं नहीं ऐसे को पूछना चाहिए आपको, उनको लिखना है आप बाद में जब उनको चर्चा करते तभी, उन्होंने हर एक के प्रश्न पर ऐसा नहीं चर्चा, फिर प्रश्न पूछने से फायदा क्या, बाद में उसको पूछना कि ऐसा वहाँ अभी कुछ शिविर थी ना उनकी, तो प्रश्न पूछा था कि उन्होंने प्रवचन सुनते समय कौन सी लब्धि है।
मैं ये पूछा उन्होंने, जिन्होंने ना कहा इनको
ना नहीं कहा, उन्होंने उत्तर दिया ही नहीं है।
मैंने पूछा ही नहीं।
किसको,
किसने लिया था, जयती ने निकाला
टाइम कौन से लब्धि है, तो
राजकुमारी
उसने आंसर दिया देखना लब्धि। मैंने कुछ पूछा,
अच्छा उन्होंने आंसर सही आंसर बताया था
देखना लब्धि, उसको राइट किया देखना लब्धि।
आप समझिए मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने यानी किसने कहा,
तीन जनों ने मिलकर
इंदौर वाली ने निकाला था
प्रश्न, सारिका ने,
सारिका ने अपना अपना निकाला, राजकुमारी ने अपना निकाला।
अच्छा यानी विषय अलग अलग थे,
10-10 मार्क्स एक ही पेपर से 30 मार्क्स अलग अलग पेज में,
और कॉमन उन्होंने आंसर दिए सबके,
उसने आंसर नहीं दिया इसका बोला था सारिका।
देखो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बाद में फोन करके पूछो आप। उसको पूछना किसका प्रवचन, आपका प्रवचन कि भगवान का प्रवचन। हाँ और वो प्रवचन खाली सुनना, अभी तमिल में हो रहा है हमने सुना, उसको आप देशना लब्धि कहेंगे है ना।
ये सारी गायन किसके मिसेस है,
छाबड़ा
वो
विकास के,
हाँ। नहीं ऐसा है ना, उनको हमको विरोध नहीं करना है, पर हमारी क्लैरिटी होना चाहिए। और आपका जितना अभ्यास है उतना तो बाकी लोगों का नहीं है, आपको जिसको ज्यादा मालूम है ना उनको ये क्लियरिटी किसी के लिए करना है, राइट रॉन्ग वो छोड़ दो, पर सब लोगों का भी उसमें
तो, हाँ
सुनने को आया है तो विशुद्धि लब्धि कहेंगे, और देशना लब्धि केवल सुनने में होती है ऐसा भी नहीं कहेंगे हम। जो सुनता है सुन को समझता है वैसे उस पर विचार करता है वो, उसमें कितने हमने बताया ना, श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण परिणमन वो सारे उसके अंग है। उन्होंने पूरे पंच लब्धि कितनी सिखाई, पुस्तक के आधार से ली,
चार्ट
बनाया,
चार्ट से कंप्यूटर में चार्ट बहुत अच्छा है, लेके
वो अनुकृष्टि वगैरह सब समझा है
नहीं, नहीं,
वो नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है,
बड़ा बड़ा क्या है वो समझाया फिर उतना डिटेल में,
ठीक है ये हम पढ़ रहे थे 72 पेज पर।
नहीं नहीं ऐसे टाइम में आप हमको पूछते ना,
ऐसा नहीं है। देखो देखो ये अश्विन भाई भी हमेशा फोन करते हैं, मैं उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला आपको उनसे प्रश्न करने चाहिए। कभी कभी क्या होता है इनका अभ्यास इतना है तो गलती भी हो सकती है ना, ऐसा अभी मेरी भी गलती हो सकती है, तो आपको पूछना चाहिए उनसे चर्चा करनी चाहिए, और पर अपेक्षा भी होती है या कभी अभ्यास नहीं भी होगा या कुछ गलत भी हो सकता है ऐसा है, तो वो दूसरे दिन उसको ठीक भी कर सकते हैं, ये करना जरूरी है। क्यों जो इतने श्रोता
कौन मंजू थाना वाली,
ठीक किसने क्या लिखा उससे मतलब नहीं हमें तो, हाँ यानी वो इन जनरल केवल पर प्रवचन सुन रहे कहने से कुछ ना, मतलब नहीं है ना उसके।
नहीं नहीं आपने अभी बताया देशना लब्धि में श्रवण आता है,
केवल श्रवण नहीं समझना भी चाहिए ना, तभी तो लब्धि अपने को होती है, और सुनने का तो केवल वो सुनना हो रहा है,
तो उसने उतना ही पकड़ा श्रवण और
समझेगा नहीं तो लब्धि कैसे कहेंगे, देशना हो रही है परंतु उसको लब्धि कब कहेंगे, हम ग्रहण करेंगे तो हम समझेंगे तो लब्धि हुई, लब्धि तो अपने ज्ञान की पर्याय है।
वो सही बात है आपकी, लेकिन हाँ। उन्होंने जो लिखा यार
हाँ, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, अभी उन्होंने
प्रवचन सुना तो थोड़ा लब्धि हो गई,
वही तो
और सेंटेंस ऐड कर दी तो
हाँ
लब्धि होती,
केवल सुनने से लब्धि नहीं कहते ना,
उतना ही लिखा था प्रवचन सुनने टाइम कौन सी लब्धि है ना, विशुद्धि कभी आप मन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बस
तुम बोल रहे हो ना उज्ज्वला की मैं
किसको बोला? अच्छा, वो आई थी इधर अपने घर में आई थी,
दोनों आए विकास और वो दोनों आए थे, और एक जन कोई था थर्ड पार्ट।
देखो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं,
अपन फोटो भी खींचे उसके साथ।
देखो ये फिर पढ़ती हैं, जो मुनिपनु लेता गुरु पासे आवो तो निर्णय जाहिर करे छे, पछी मुनि थाय छे, हमने पढ़ा था अभी, स्वरूप मां लीन थाय छे, आम ले छे, एम के छे। यानी क्या है, पहले में पहले जाके आचार्य के पास जाते हैं और फिर उनको कहेंगे कि शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप जो सिद्धि है वो मुझे दीजिए, मुझे उपकृत कीजिए, कृपा कीजिए। तो आचार्य भी उनको बताएंगे ये तेरे सिद्धि है करके। तो वहां वो बता है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरा नहीं, वगैरह वगैरह अपनी पोजीशन बता रहे। तो ये तो होने वाले है भावलिंगी, परंतु अभी इसको कहते भावी नैगम नय से, आगे चलकर वो भावलिंग प्रकट करेंगे। कब? जब शुद्ध उपयोग में जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, तब जाके उनको सातवां गुणस्थान प्रकट होगा, तब उसको हम भावलिंगी कहेंगे। ये तो भावी नैगम थी, भावी नैगम नय है ना, ये नय का एक भेद है, नैगम नय। तो भावी नैगम थी अत्यारे भावलिंग ले छे एम कयूं, एक कथन मात्र है। पछी जारे ध्यान मा बेसे त्यारे भावलिंग थासे, जैसे हम अभी घर लॉक कर रहे और फिर निकले नीचे गए तो पूछा कहाँ गए? शिखर जी गए। अरे शिखर जी कहाँ, अभी टैक्सी में भी नहीं बैठे, अभी वहां जाने के लिए निकले हैं, तो वहां गए ऐसा कहने की पद्धति है, ऐसा ही। आप आ तो हजी तो एनी परदी भिन्नता ने चीज मारी केवी छे एनु आ तो वर्णन छे, एने मेरी जो चीज है वो पर से भिन्न है ये बात बता रहे। आओ भगवान आत्मा, देखो अन्य सब मेरे से जुदा है, इसे कहा अन्य पर पदार्थ, अन्य जीव तो जुदे है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, परंतु अपने में जो मोह राग द्वेष है, जो आश्रव तत्व जिसको कहें पुण्य और पाप, वो भी मेरे से जुदे है। क्योंकि मैं किसमें स्थापित किया, जीव तत्व यानी स्वभाव भाव, और ये पर्याय में जो विकारी भाव है वो मेरे नहीं है, क्योंकि उसको अन्य तत्व बताए हैं शास्त्र में, सात कहो या नौ तत्व अलग अलग बताए हैं, तो उसमें मैं तो जीव तत्व हूं जो स्वभाव भाव कायम रहने वाला, उसमें कभी हीना दिखता कुछ नहीं होगी। तो अन्य एवं माराथी जुदू एवं काई पण मारू नथी, यानी मेरे से जुदा ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है। आम निश्चित मति वालो वर्तो तो थको, यानी जिसकी मति ऐसी निश्चित हो गई, जिसका ऐसा व्यवस्थित निर्णय हो चुका है। छे आम निर्णय मति वालो वर्तो तो थको, यानी ऐसा जिसका निर्णय हुआ है जिसकी बुद्धि में, ऐसा जो जीव है, अने परद्रव्यो साथे स्वस्वामी संबंध जेमनो आधार छे। देखो इंद्रिय ने मन, आ पांच इंद्रियो छे अने मन, पांच इंद्रिय और मन है, और क्या है, परद्रव्यो साथे स्वस्वामी संबंध जेमनो आधार छे। इंद्रिय और ये मन के लिए आधार क्या है, पर साथे जो पर के साथ जो हमने स्वस्वामी संबंध मान के रखा है, ए परद्रव्य साथे एने स्वस्वामी संबंध छे, ए इंद्रियो स्व ने हूँ एनो स्वामी एवं मारी पास कई छे नहीं। इंद्रिया ये मेरे स्व और मैं उनका स्वामी, ऐसा मेरा और इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है। आ इंद्रियों शरीर ना अवयव, ये क्या है, शरीर के चिन्ह है, शरीर के अवयव है इंद्रिया, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी, ये तो द्रव्य इंद्रिया है ना। जे इंद्रियो एटले शरीर ना अवयव अने मन पण एक परमाणु, ए परद्रव्य साथे स्वस्वामी संबंध, परद्रव्य तेनु स्व अने परद्रव्य तेनु स्वामी, ए मारी इंद्रियो छे अने हूँ एनो स्वामी छू एम छे नहीं। क्या कहते, ये इंद्रिया मेरी है और मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा उनका मेरा कोई भी संबंध नहीं है। જુઓને, જુઓ ને, દેખો ને, દેખો, દેહ છૂટતા તદ્દન અસાધ્ય થઈ જાય છે. એને જબ દેહ છૂટને કા પ્રસંગ આતા હૈ, મરણ કા સમય હૈ, અસાધ્ય હોતે ને બેહોશ હો જાતા હૈ. અસાધ્ય ને બેહોશ, જે કોમા મે ચલા ગયા, જિસકો કહે ને, ઉસકો બેહોશી આ ગઈ. ભગવાન અંદર જો ઇન્દ્રિયની એકત્વ બુદ્ધિમાં આમ થઈ ગયો, તદ્દન જુદો, એને ખાસ બિલકુલ જુદા અલગ ઇન્દ્રિયોનું એવું થવું એ કઈ આત્માને આધીન નથી. ક્યાં કહેના ચાહતે, બેહોશ કહો યા અસાધ્ય કહો, એ તો બાહ્ય શરીર કી અવસ્થા હૈ, ઇન્દ્રિયો કી અવસ્થા હૈ. આત્મા કા ઉસ સમય ઉસસે કોઈ સંબંધ નહીં હૈ. આત્મા ઉસ સમય ભી ઉસસે જુદા ભિન્ન હૈ કે નહીં હૈ? ઓર ઉસ સમય ઉસકે સ્વભાવ મેં કુછ કમી હો ગઈ? બહાર તો એક ઇન્દ્રિયવત વો પડા હૈ, ઉસકો કોઈ સુઈ ચુભાયો, કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં દે રહા હૈ. ડોક્ટર કુછ ના કુછ ટેસ્ટ કરતે ના, તો કૈસા હૈ વો? કોમા મેં ચલા ગયા હૈ. પણ વહાં આત્મા કે પરિપૂર્ણ શક્તિ કે સાથ આત્મા વહાં વિદ્યમાન હૈ કે નહીં હૈ? જાનન કા કાર્ય રુક ગયા, વો જાન રહા હૈ કે નહીં જાન રહા હૈ? નહીં જાન રહા, નહીં જાન રહા હૈ તો હમ નહીં, નહીં, વો જીવ જાન રહા હૈ કે નહીં જાન રહા? વો જાન રહા હૈ વો હમકો નહીં પતા ચલ રહા હૈ. આપ નહીં જાન રહે કે વો ક્યા જાન રહા હૈ? ડોક્ટર નહીં જાન રહે કે વો ક્યા જાન રહા હૈ? વો સુઈ ચુભા રહે, ઉસકો રિસ્પોન્સ, ઉસકે ઉસે કુછ જો શરીર મેં જો અવયવ મેં કોઈ ખામી હૈ, વો હલચલ નહીં હો રહી હૈ. પણ ઉસકો વો સમજતા હૈ કે નહીં, વો આપકો ક્યા પતા? ધ્યાન મેં આઈ ના બસ? વહાં વો જીવ હૈ, ઉસકા જ્ઞાન ગુણ હૈ, તો ઉસકા કાર્ય મિટેગા ક્યા? નહીં, રાગ દ્વેષ ભી ચલ રહે, ક્યોંકિ બંધ હૈ કે નહીં? બેહોશી અવસ્થા મેં કોઈ નીંદ મેં હૈ તો ઉસકો રાગ દ્વેષ ચલ રહે કે નહીં ચલ રહે? જ્ઞાન દર્શન સબ કાર્ય ચલ રહે ના, અનંત ગુણ હૈ તો પ્રત્યેક ગુણ કા કાર્ય ચલ રહા હૈ. એસે બેહોશી મેં ભી વો જ્ઞાન, જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ, તો ઉસકા જ્ઞાન કા કાર્ય ચલ રહા હૈ. હમ નહીં સમજ રહે વો ક્યા જાન રહા હૈ યા ક્યા ચલ રહા હૈ? ચલતા હૈ ના? છૂટતા હૈ ને છૂટતે સમય અસાધ્ય કબ કહેંગે, બેહોશ કબ કહેંગે? હા, અસાધ્ય ને બેહોશ ના ગુજરાતી, હા, છૂટને કે સમય મેં.
ઇનકા કોઈ પ્રશ્ન?
હા,
જો
વો બેહોશ હૈ ઉસકો માલુમ હો રહા હૈ, પણ આપકો માલુમ નહીં વો ક્યા માલુમ કરતા હૈ?
નહીં, ઉસકે જ્ઞાન કી હીનતા હુઈ હૈ.
ભલે ઉસકી જ્ઞાન કી હીનતા ભી હૈ, વો બહાર આપકો રિસ્પોન્સ નહીં દે રહા હૈ, પરંતુ ઉસકા અંદર જ્ઞાન ચલ રહા હૈ કે નહીં ચલ રહા હૈ? વો વ્યક્ત નહીં, આપકો નહીં પતા ચલ રહા હૈ વો ક્યા જાન રહા હૈ? અબ એકેન્દ્રિય જીવ જાનતે હૈ કે નહીં જાનતે? અરે વો ઝાડ તો એસા કા એસા, ઝાડ કો છોડો, વો પૃથ્વી કા એક જો જીવ હૈ, ઉસકા જાન ચલ રહા હૈ કે નહીં ચલ રહા હૈ? આપ તો ક્યા ચલ રહા હૈ, વો જ્ઞાન જાનતા હૈ, ઉસકા આપકો લગતા હૈ ક્યા? અગ્નિ કાઈ કો, જલ કાઈ કો, એ સબ હૈ ના, વો જાન રહે, આપકો ક્યા પતા હૈ જાનતા હૈ કે નહીં જાનતા? એસે હી વો બેહોશ જો જીવ હો ગયા હૈ, કોમા મેં જો હૈ, ઉસકા જાનને કા ક્યા કાર્ય હો રહે? હમકો શરીર સે થોડા હી વો સમજ મેં આયેગા, શરીર ઓર, અરે શરીર ઓર વો જુદા હૈ કે નહીં હૈ? તો વો દ્રવ્ય કા કાર્ય ચલેગા કે નહીં ઉસકે અંદર? હમ તો શરીર કી અવસ્થા દેખ રહે, હમ જીવ કી અવસ્થા કઈ નહીં દેખેંગે વહાં પર?
આદત પડી,
આદત હૈ, ક્યોંકિ હમને જીવ ઓર શરીર કો એક માના હૈ, ઉસી કો હમ જીવ કહેકર પુકાર રહે, ઓર વો મર ગયા એસા કહેંગે અભી, હૈ ના? મેરી બુઆ એને ફઈ હમ કહેતે ગુજરાતી મેં, વો બેહોશ થી, એને કોમા મેં થી લાસ્ટ 8-10 ડેઝ તો કુછ કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં, કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં. ઉસકા લડકા ઉસકે બાજુ મેં ઉસકો બુલાતા થા, તો મેને કેવલ નોટિસ કિયા થા, વો યાની ઉસકી જો આંખ કે અંદર એસે વો ગોલ દિખતા હૈ ના હમે, આઈરિસ કા કહેતે વો, યાની બહાર કે ઉસ પર, તો એસે છોટી બડી એસે ડાયલેટ હોતી થી, ડાયલેટ હોતી થી,
હા,
તો ઇતના ઉસકા રિસ્પોન્સ આતા થા. બહાર તો કુછ નહીં, હાથ પેર મેં કુછ ચુભાવ, કુછ કુછ નહીં, પણ વો સુનતી થી કે નહીં એ સમજ મેં આયે ના? સુનતી થી તભી તો ઉતના તો શરીર મેં રિસ્પોન્સ મિલતા થા. वो बाहर कुछ व्यक्त नहीं कर सकती थी। ये तो बाकी वो शरीर को जिसको हम कहेंगे द्रव्य प्राण उसको चालू रखते हैं। अभी आजकल की बात मत पूछो। अरे वो मर गया तो अभी चलता रहता है, डॉक्टर को तो हॉस्पिटल को अपना पैसा है इतना है।
वो फई के आगे की बात बोलो, फुआ की
वही तो बताया।
अच्छा मैं बताऊं?
हाँ बताओ।
वो शांति सागर महाराज आखिर के दिनों में कौन से जगह
कुंतलगिरी
में रहे थे।
हाँ।
समझ तो रोज ऊपर चढ़ के जावे कैसे टमें ठीक है मैं नहीं चाहे। एक महीने एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया।
वो फुआ वो बता
रहे। फुआ 45 दिन गए ऊपर नीचे। जिस दिन वो निर्वाण मतलब खत्म हो गए हाश ऐसा बोले, और उसकी बीवी बीमार थी जो 10-10 दिन तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। रोज बोलते अरे क्या है जाती ही नहीं। अरे
क्योंकि वो बचने वाली नहीं थी ऐसा तो अंदाज आ गया था। फिर ऐसे ना रोज जाके वहाँ बैठे ऐसा करते थे। देखो
नहीं वो अपनी भाई की तो बात बराबर बताती, मैं फुआ की
नहीं। मुझे वो अंदर जानने का कार्य चल रहा था ये बताना था।
नहीं बाकी लोगों को इसमें इंटरेस्ट है
वो तो दुनियादारी सब देखी है ना बाहर से। हाँ देखो आगे, यानी मेरे से अन्य ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है ऐसे जिसने निर्णय किया है।
थर्ड लाइन
कहाँ पर है?
किम किम
ये इंद्रियों शरीर ना हुए ये बात होगी कि ना। हाँ लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जुओ ने। हाँ ये नीचे का पढ़ देते देह छूटता तद्दन असाध्य थी जाए, यानी वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। भगवान अंदर जुदो इंद्रियनी एकत्व बुद्धिमा आम थई गयो तद्दन जुदो। इंद्रियोनु एवं थवुं ए कहीं आत्मा ने आधीन नथी। अभी वो देह की जो अवस्था है ये जो बेहोश करना जो बाह्य में हमको पता लग रहा है कोई इंद्रिया उसको रिस्पॉन्ड नहीं हो रही है दे रही है हमको नहीं पता चल रहा है क्या है तो वो उससे जुदा ही है ना। और वो आत्मा के हाथ की बात नहीं है यानी वो आत्मा के अधीन नहीं है। इंद्रिया तो शरीर की अवयव है। केम के एनो स्वामी जड़ छे समझाय छे। आंख नु आ फरकू आम थवू कान नु आम थवू एनो स्वामी जड़ छे। जड़ क्या है? वो शरीर है कुदगल है कुदगल से बनी हुई है। जड़ तेनु स्व अने जड़ तेनो स्वामी वो कुदगल की है ना इसलिए जड़ ही उसका स्व है और जड़ ही उसका स्वामी है। एने मैं जीती छे एम समय सारणी 31 गाथा मां कहे छे यानी ऐसे इंद्रियों को मैंने जीता है। इंद्रियों में क्या क्या काम है उसमें? द्रवेंद्रिय ये जो शरीर के जो आंख कान वगैरह है वो द्रवेंद्रिय। भावेंद्रिय ने क्षोभम ज्ञान के पर्याय को भावेंद्रिय कहते हैं और ये इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जानने में आता है उसको भी इंद्रिय कह दिया। तो द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय इन सबको इंद्रिय कहकर इनको मैंने जीता है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। उनको जितेंद्रिय का
ये समय व्यवहार का कथन हुआ।
हाँ तो कहते परद्रव्यो साथे स्वस्वामी संबंध जेमनो आधार छे यानी जिनका आधार है स्वस्वामी संबंध जेनो आधार जड़ साथे छे एवी इंद्रियों ने नो इंद्रिय उनका संबंध किससे है? जड़ के साथ है एटले मन। नो इंद्रिय का अर्थ क्या है? मन। इंद्रिय और नो इंद्रिय जैसे हम कषाय और नो कषाय कहते हैं वैसे इंद्रिय और नो इंद्रिय ने मन 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 के लिए नो इंद्रिय शब्द आता है। नव ने नो नो एनो एने किंचित ये इंद्रिय जैसा ही है जैसे इंद्रियों को करण कहते हैं और मन को अंतःकरण कहते हैं वो एक टाइप का इंद्रिय ही है। इसलिए हमेशा मन इंद्रियों के साथ मन को भी लेते हैं। जैसे इंद्रिय में तो इंद्रिय संयम में कितने कितने प्रकार का इंद्रिय संयम? 6 प्रकार का, 5 इंद्रिय और 1 मन। इंद्रिय जैसे उसका कार्य है,
मेन तो मन ही है, इंद्रिय में भी मेन तो मन ही है।
मन उसका कार्य अलग है, इंद्रिय का कार्य अलग है, हर एक सेपरेट है, जुदा जुदा है, हर एक का कार्य अलग है।
तो इंद्रिय, एक मिनट, आप तो कह रहे हैं कि मन ही मुख्य है, तो एक इंद्रिय को मन नहीं तो क्या करेगा वो? दो इंद्रिय को भी मन नहीं, तीन इंद्रिय को भी नहीं, चार इंद्रिय को भी नहीं, पंच इंद्रिय असंगी को भी नहीं,
किसमें मन मुख्य है? बोलो बोलो, आपने कहा ना मुख्य है, मुख्य है ना किसमें?
संगी पंचेंद्रिय,
संगी पंचेंद्रिय मन सहित है,
मन सहित है,
यानी क्या करते हैं? मन के द्वारा विचार करने की पात्रता विवेक है, अपने लिए क्या ठीक है अठीक है आदि विचार कर सकते हैं। इसको कल ही पढ़ेंगे, हमने एक ही लाइन पढ़ी थी ना 72 पेज पर लास्ट, वहां से पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सुवाणी मस्तकनं सदा देत हो। नेहा भी